नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। फोर्ब्स की एशिया के परमार्थ कार्य करने वाले नायकों की सूची में भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता के साथ साथ मलेशियाई भारतीय कारोबारी ब्रह्मल वासुदेवन और उनकी अधिवक्ता पत्नी शांति कंडिया को शामिल किया गया है। एशिया के परमार्थ नायकों की सूची का 16वां संस्करण मंगलवार को यहां जारी किया गया। फोर्ब्स ने बयान में कहा कि बिना किसी रैंकिंग वाली इस सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी परोपकारी कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। अडानी ने इस साल जून में 60 साल की उम्र पूरी होने पर 60,000 करोड़ रुपये परमार्थ कार्यों पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बाद उन्हें सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वो भारत के प्रमुख परोपकारी कार्य करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ये पैसा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास पर खर्च किया जाएगा। परमार्थ कार्यों पर यह राशि अडानी फाउंडेशन के माध्यम से खर्च की जाएगी। अडानी फाउंडेशन का गठन 1996 में किया गया था। हर साल ये फाउंडेशन भारत में 37 लाख लोगों की मदद करता है। अपनी मेहनत से अरबपति बने शिव नादर देश के प्रमुख दानदाताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने शिवनादर फाउंडेशन के माध्यम से एक दशक के दौरान $1 अरब परमार्थ कार्यों में लगाए हैं। इस साल उन्होंने फाउंडेशन को 11,600 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस फाउंडेशन की स्थापना 1994 में हुई। नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज की सह स्थापना की थी। उन्होंने फाउंडेशन की मदद से कई शैक्षणिक संस्थानों, मसलन स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दिसंबर में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। इनमें डेटा सेंटर, चिकित्सा उपकरण पार्क, संस्थागत और समूह हाउसिंग योजनाएं शामिल हैं। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस निवेश से न सिर्फ यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र बल्कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों को फायदा मिलेगा। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य को $1,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसके लिए लखनऊ में अगले साल 10 फरवरी से 3 दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने 10, 11 और 12 फरवरी को होने वाली सम्मेलन में 60,000 करोड़ रुपए का देशी विदेशी पूंजी निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। निवेश हासिल करने के लिए प्राधिकरण क्षेत्र में एक साथ 11 योजनाएं लाई जाएंगी। सिंह ने बताया कि आगामी 9 दिसंबर से विदेशी पूंजी निवेश लाने के लिए वो अपनी टीम के साथ दक्षिण कोरिया और जापान के लिए रवाना होंगे। वो 9 दिसंबर से 18 दिसंबर तक दक्षिण कोरिया और जापान में वहाँ के उद्यमियों से मिलेंगे, उनके सामने निवेश का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने बताया कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए यमुना प्राधिकरण ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक फिल्म सिटी, सबसे बड़ा डेटा सेंटर, चिकित्सा उपकरण पार्क, समूह हाउसिंग परियोजना, अपैरल पार्क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुकान कॉम्प्लेक्स और संस्थागत योजना 9 दिसंबर से शुरू करने का फैसला किया है। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख तथा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच मंगलवार को स्थानीय शेयर बाजार गिरावट के रुख के साथ खुले। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 444.53 अंक टूटकर 62,390.07 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 123.15 अंक के नुकसान से 18,577.90 अंक पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, इंफोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सन फार्मा, नेस्ले और भारतीय एयरटेल के शेयर नुकसान में थे। इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, NTPC, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे। अन्य एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में थे। वहीं जापान का निक्की लाभ में था। सोमवार को वॉल स्ट्रीट नुकसान के साथ बंद हुआ था। घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली दबाव तथा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 24 पैसे टूटकर 82.09 प्रति डॉलर पर आ गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि इसके अलावा विदेशी कोषों की निकासी से भी रुपए पर दबाव पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 81.94 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला। उसके बाद ये और टूटकर 24 पैसे के नुकसान के साथ 82.09 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 92 पैसे के नुकसान के साथ 81.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को आंकने वाला सूचकांक 0.07% के नुकसान से 105.22 पर आ गया। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.94% चढ़कर 43.46 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अडानी मीडिया नेटवर्क्स ने NDTV के ओपन ऑफर में 8% अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है और इससे मीडिया कंपनी में उसकी कुल हिस्सेदारी 37% हो गई है। बता दें कि शुरू में अडानी मीडिया नेटवर्क्स ने NDTV में 29% का अधिग्रहण किया था। इसके बाद में भारत के अधिग्रहण नियमों के अनुरूप अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश की। बता दें कि ओपन ऑफर सोमवार को बंद हुआ। NDTV में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी अब 37% है, जो मीडिया कंपनी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय के पास मौजूद 32% से अधिक है। पॉक्सी एडवाइजरी फर्म इन गवर्न के संस्थापक श्रीराम सुब्रमण्यम ने कहा, अडानी और रॉय दोनों को NDTV के प्रमोटर के रूप में लिस्ट किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।